न तथा मे प्रियतम आत्मज्योनि न शंकर न च शंकर न श्री नई आत्मा चथात्मा। ये उद्धव जी को कह रहे हैं, जिसमें उद्धव जी को संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं जैसे इसको जाकर के तुम विदुर को बतला और विदुर मैत्री में संवाद होगा और तुम चला जाना नमी तुम्हारा पत्रिका। उस समय में उसमें जी उपदेश देते हुए कहते हैं तुम्हारे समान और कोई हमारा प्रिय नहीं है, न तथा मे प्रियतम तुम्हारे जैसा प्रियतम आत्मज्योनि, आत्मज्योनि जो ब्रह्मा है, आत्म माने मैं, मुझसे निकलने वाले जो आत्मज्योनि, आत्मज्योनि माने क्या, आत्मा से निकलने वाले आत्मज्योनि नहीं, यहाँ पर आत्म माने कृष्ण है या भगवान है, उनसे उनकी नाभि से निकलने वाले ये आत्मज्योनि। और शंकर हरि और हर एक आत्मा है, भगवत तत्व जानने वाले शंकर जी हैं, वो भी हमारे उसमें पी रहे हैं। न तो शंकर कर्ण हमारे भैया जो बलदेव हैं वो भी हमारे उसमें प्रिय हैं किंतु तुम्हारे जैसे नहीं, न श्री लक्ष्मी जी भी नहीं, न आत्मा मेरी आत्मा भी नहीं जैसे आप मेरे उद्धव जी के लिए कहते। फिर कहते हैं वासुदेवो भगवता संतु भगवते स्वमहम किम पुरुषाणाम भगवान विद्याधराणाम सुदर्शन। उद्धव से कह रहे हैं उसी उसी के बाद में के श्लोक में ग्यारह में स्कंद के चौदहवें अध्याय में बता रहे हैं। देखो भगवता जितने भगवत अवतार हैं भगवत तत्व हैं उसमें मैं वासुदेव हूं मैंने कृष्ण हूं मैंने सबका अवतारी हूं। और स्वंतु भागवते स्वहम भगवतों में तो मैं वासुदेव हूं मैंने भगवान और भागवतों में भागवत मैंने भगवान के प्रिय जो भागवत है उसमें मैं तुम हूं, तुम है मैंने
उद्धव
ते तू अहम तुम हो मैं ही तुम हूं तुम्हारे। और किम पुरुषाण किम पुरुष बानर हो बानर माने क्या
हनुमान
बानर
नर बान
वैसे किम पुरुष पुरुष और उसके बाद में किम पुरुष, किम पुरुष माने मनुष्य जैसा देखने इसलिए किम पुरुष कहते हैं तिब्बत को क्यों वहां पर बानर लोग अधिक रहते हैं इसलिए किम पुरुष तो नहीं है मनुष्य तो नहीं है बानर तो नर तो नहीं है इसलिए किम पुरुष। तो किम पुरुषों में बंदरों में हनुमान ही और विद्याधारण सुदर्शन सुदर्शन विद्या इस तरह से भक्तों में भी भागवतों में भी उद्धव जी को यहां पर ले आए हैं। उनकी कीर्ति सबसे अधिक है इन लोगों से भी और उनसे भी गोपियों की चरण धूली जाते हैं अपने श्री पर अहो भाग्यम नहीं आसाम अहो चरण रे चांद वृंदावने की मुक्ति। इस तरह से उद्धव जी जिन गोपियों की चरण धूली चाहते हैं इन गोपियों के समान और कोई कृष्ण का प्रिय नहीं। अरे ऐसे गोपियों में सबसे प्रिय हैं चंद्रावली जी आते हैं और इन दोनों में सर्वाधिक का रूप गुण सब विषय में सबसे ये महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका इनकी कीर्ति के समान और कोई ये कीर्ति किसलिए भगवान की सेवा करने की वजह से इसलिए सब कुछ अपना सर्वस्व छोड़ करके भगवान की सेवा यदि करता है कोई तो यही सबसे बड़ी कीर्ति है। अब यह कीर्ति आरंभ हुई प्रहलाद महाराज से लेकर के और अंत में श्रीमती राधिका तक यही सब कीर्ति का अंतिम मान बिंदु है। ऐसा समझ करके अपने अपने अधिकार और योग्यता के अनुसार में ऐसे भक्तों का अनुसरण करना ही उचित है। आज
गौरचंद्राचराधिक कृष्णाय कृष्णभक्ताय
जो मैंने कहा इसका तात्पर्य एक ही प्रकार से समझो, अनन्य भक्त तो है किंतु भगवान के प्रति अनन्य भाव नहीं है,
भक्त है भक्तवासी भाव नहीं,
भाव नहीं है, अनन्य भाव। भाव माने जो चार प्रकार की रतियां हैं वो चार प्रकार की रतियां इनके प्रति विकसित या लगी हुई नहीं, जैसे गोपियों का भाव वो गोपी भाव मधुर भाव, यशोदा नंद बाबा का वो वात्सल्य भाव है, यशोदा जी की भक्ति है कृष्ण में ऐसा कहें नहीं कहें, यशोदा जी की सुगंध की सिद्धांति गोपियों की कृष्ण के प्रति भक्ति है वो साधारण लोगों के सामने इस प्रकार से कर सकते साधारण, किंतु वहां पर जब इसका वर्णन करेंगे तो एक एक भाव उनका सिद्ध है, इसलिए अनन्य भाव उनमें नहीं कृष्ण के प्रति। जो गोपियों का है सुबल सिद्धांत का है अथवा
नंद
यशोदा का ऐसा भाव नहीं उनमें है सिद्ध भाव, जिसमें ये हाई भाव जिनमें ये नहीं, इसलिए अनन्य भाव नहीं, वो कहीं तो प्रकाशित नहीं है, हो सकता है कि हो किंतु कहीं शास्त्र में ऐसा नहीं देखा, किंतु अनन्य भक्ति भगवान के प्रति है, भगवान की किसी विशेष स्वरूप पर उनका भजन नहीं। एक अस्कृत वो है, तीन श्लोक है कृष्ण का, उसमें नाम दिया है
मोतीर न कृष्ण
बरसो होगा, ये कौन का है
कृष्ण
का उल्लेख तो देखा जाता है और ये सत्यु की बात है, तो सत्युग कलयुग के बाद ही पड़ता है, कलयुग तक में कृष्ण की प्रधानता थी इसलिए वो कह रहे हैं या वापस रूप से लिखे गया। भगवान की
चतुर्भुज नारायण
ही है, स्पष्ट इसका बड़ा भगवान की प्रति भक्ति है, अर्थात वो सब स्वरूपों में ही उनकी भक्ति है, इसलिए अभी ऐसा होने के वर्णन कारण स्पष्ट उससे स्थाई भाव का वर्णन नहीं मिलता, जब स्थाई भाव होगा तो अनन्य भाव होगा, इसलिए उनका वर्णन ऐसा नहीं मिलता कि कौन सा भाव अनन्य भाव में, किंतु अनन्य भक्ति माने भगवत स्वरूप को छोड़कर के उनकी कहीं भी भक्ति नहीं है और उस भक्ति के बदले और कुछ नहीं चाहते, किंतु अभी स्वरूप का भी निर्णय नहीं हो सका, इसलिए हमने अनन्य उनका भक्ति है साधारण रूप में जनरल रूप में, किंतु जब विशेष रूप से विचार करेंगे जैसे जितने भी भगवत स्वरूप हैं वो हतारी गत गायक हैं, जिसको वो मारते हैं उसको गति देते हैं, जितने भी अवतार राम है सिंह है या कोई भी भगवत स्वरूप जिसको मारेंगे उसको गति देते, किंतु कृष्ण में ये हतारी गतिदायक सबसे ऊंची स्थिति तक का है, उनको गति का क्या देंगे अपना परिकर भी बना सकते हैं कृष्ण, किंतु और लोग जो है मुक्ति तक देंगे धन ऐश्वर्य संपत्ति इत्यादि देंगे, बस इतना तक इसके बाद में नहीं देंगे। इसलिए कृष्ण में हतारी गति दायकत्व तो जो भाव है
चरम सीमा तो
चरम, उसी प्रकार से मान लिया कि उदारता है, करुणा है। भगवान का कौन सा ऐसा अवतार है जिसमें कृपा या करुणा नहीं है? सब में है। किंतु जब विचार करेंगे कृष्ण का ना मनुष्य, तब इसीलिए कृष्ण को स्वयं भगवान का, उनकी करुणा से उनकी तुलना नहीं होगी। और कृष्ण के जो गौ स्वरूप है उनकी तो बात नहीं किया, करुणा की धन विग्रह है। इसलिए मैंने कहा जैसे वो स्थाई भाव था और उस चार प्रकार के जो भाव है रति है उनमें से इसका कुछ उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। किंतु भगवान के प्रति शरणागति जो साधकों में सर्वोच्च अवस्था में महाभाव अवस्था में होता है, भगवत दर्शन समस्त प्राणियों में, यहाँ तक नृसिंह जी अपना दर्शन भी उनको दे दिया कुछ देर के लिए, ये सब चीजें उनमें हैं। इसलिए भगवान के प्रति अनन्य भक्ति होने पर भी अनन्य अभिभाव जो होना चाहिए, जो सिद्धों के लिए आवश्यक है या भावुक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, वो सबका उल्लेख कहीं पर नहीं। इसलिए हमने उसको कहा
भगवान
कौन मिश्रा है आएगा तो उनसे ऊपर कुछ दास्य भाव का कुछ उनमें है, इसलिए वो तो निष्ठा उसमें जरूर रहेगा। उनका जो सनक सनंदन जैसे नहीं है, जो निर्विशेष ब्रह्म में उनकी निष्ठा है ऐसा नहीं, उनका तो दास्य भाव है। संतनंदन के ऊपर में निर्विशेष ब्रह्म अपना श्री चरण कमल नहीं रख सकते, और नृसिंह जी स्वयं कृपा करके अपने किसी स्वरूप से इनके ऊपर में अपना चरण कमल रख सकते, का कमल रख सकते। इनसे बातचीत कर रहे हैं, संत सनातन बातचीत नहीं करेंगे, हृदय में स्फूर्ति करा देंगे और ये लोग बात कर। जब ब्रह्मा जी की कृपा समय समंदर पर होगी तब वो लोग में जाकर के तुमसे कुछ बात
करें। ब्रह्मा अपेक्षा प्रहलाद जी से,
ब्रह्मा अपेक्षा शंकर जी से, और शंकर जी कह रहे हैं कि हमसे विशेष है, मैं भगवान की वो सेवा नहीं कर
पाता।
दैन्य करके ही कहो, या नारद जी कहते हैं कि अब तुम हमारा बेटा नहीं है, अब तुम हमारा गुरु हो गए, कह रहे हैं नहीं और अब तुम हम वो प्रणाम करने जा रहे हैं। अजय गुरु जी आज आप
ये
कुछ गड़बड़ हो गया क्या, आप हमको इतना सम्मान दे रहे हैं? मैं प्रहलाद पहले तुम्हारा ये महिमा नहीं जानता था, शंकर जी से तुम्हारी महिमा जब सुना है तब मैं, और इतना तुम ऊंचा है ये सब मैंने उन लोगों का दंड भी है, और नवीन भक्तों का कुछ उत्साह वर्तन है। अब सचमुच में प्रहलाद महाराज जी को जो सेवा का अवकाश मिला है वो इनको ब्रह्मा जी को तो मिला ही नहीं, शंकर जी को भी मिला है। तब शंकर जी वृंदावन में गोपी होकर के आए हैं, ये तो उल्लेख है, किंतु उनको सेवा मिली नहीं। देख रहे हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ अस्सी वर्ष सहस्र प्राणी माया सप्तम तपस पूरा। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं मैंने 80 वर्ष माने 60 वर्ष 60,000 वर्ष लगातार माया सप्तम मैंने तपस्या की, कठोर तपस्या की पूरा मैंने पहले बहुत पहले मैंने 60,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। नंद गोप ब्रज स्त्रीण पादरेणु उपलब्ध है, किस चीज के लिए? नंद गोप ब्रज स्त्रीण, नंद गोप में जो स्त्रियां हैं जो रमणियां हैं कृष्ण की, जो प्यारी हैं सहेलियां सखियां, उनकी चरण धेनु को रेणु को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है माने प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्ष तक पहले मैंने कठोर तपस्या की। तथापि 7000 वर्ष तपस्या करने पर भी कठोर रूप से ये तपस्या कैसे कर रहे होंगे? क्या तपस्या? आग में खड़े होकर के, न पानी में खड़े होकर के, न अनाहार इत्यादि रहकर, ये सब तो होगा ही। गोपाल मंत्र और काम गायत्री के द्वारा कर रहे थे 7000 वर्ष। तथापि न मया प्राप्त, तथापि मैं नहीं प्राप्त सका। ताशां वही पागरे नव, मैं उनके चरण धूलि को मैं नहीं प्राप्त।
ताशां पागरे नव
न प्राप्त ताशां वही पागरे नव न हम शिवस्य शेषस्य श्रीश्चतादि समापतित। मैं और की तो बात क्या कहूं, न अहम, मैं तो पाया ही नहीं, न शिव, शिव को भी न प्राप्त तासां वै पादरेण, शंकर जी को भी वो पादरणी नहीं मिली, शेषस्य शेष जी को भी, शंकरसन को भी नहीं मिली, और की तो बात क्या, लक्ष्मी जी को वो न मिली, गोपियों की चरण रेणी झोली। तावी समान पति, तावी समान उनके समान भाव किसी का नहीं। पदरेणु का प्राप्त करना माने क्या, उनके समान भाव आना तो नहीं पा। अच्छा प्रहलाद जी में ये है, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने 7000 वर्ष तक किया, हम लोग कितना वर्ष कर रहे हैं वो भी मन लगा करके कर रहे हैं कि नहीं, और वो एक तान से मन लगा करके बिना खाए पिए दिन रात 2400 घंटा करते हुए 7000 वर्ष बिना खाए पिए पानी पिए, कितना कठिन है गोपी भाव। तो कहते हैं कि पादरेणु मुझे नहीं मिली। अच्छा तब उनमें लोभ नहीं होता तो करते कि नहीं करते, ये विचार नहीं तो लोग कुछ था जरूर, लोग से होकर के तब वो काम गायत्री इत्यादि के द्वारा 7000 वर्ष तक वो उपासना करते, किंतु नहीं। तो फिर हम लोग वृथा चेष्टा कर रहे हैं, वृथा चेष्टा नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मा जी को वो अनुकूलता नहीं थी। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के ये लीला के बाद ही में 400 वर्ष के अंदर में, 500 वर्ष के अंदर में हम लोग हैं, और उनके अभी वैसे भक्त लोग अभी तक धारा में आ रहे हैं। अभी रूप गोस्वामी इत्यादि के बाद में श्यामानंद प्रभु नरोत्तम ठाकुर, ये कितना हो गया होगा, 250 वर्ष, ये हमारे 250 वर्ष नहीं 300 वर्ष, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कितना दिन हो गया होगा, 200। भक्ति विनोद ठाकुर कितना हो गया, 100 हुए। और प्रभुपाद जी को कितना, 1941 में गए कि 37 से प्रारंभ, तो वो प्रभुपाद जी का कितना हुआ, और हमारे गुरु जी को गया हुए कितना हो गया, कितना हम लोगों का सौभाग्य। अभी भी गंगा नदी जी बह रही है वहाँ, बह रही है ना, अभी गंभीरा भी अभी पूरी में है, जाते हैं तो कुछ अंत तक भाव कुछ होता है। इसलिए हम लोगों के लिए जो कि इसमें कुछ साधन भाजन पारायण का तनाव प्रचुर सौभाग्य है, ब्रह्मा जी दिन रात उस काम में व्यस्त रहते हैं, सृष्टि का कार्य में, और करोड़ों जगहों से उनके लिए फोन आ रहे हैं, करोड़ों जगहों से करोड़ों ब्रह्मा भी उसमें आ रहे हैं, सही है, इंद्र प्रभृति उनको फोन कर रहे हैं कि यहाँ ये करना है वहां करना है, असुरों का उत्पात है। हमारी समस्या कितनी है, उनकी समस्या कितनी, इसलिए कहते हैं हमारी तो बात ही क्या है, शंकर जी से श्री इत्यादि भी गोपियों की पद रेणु को नहीं प्राप्त करते, इसलिए करते हैं। এই 50 বছর যে তাহার বাকি যে থাকলো এর মধ্যে আর বাড়বে কি কমবে কি ওই রকম থাকবে কোন মানে আছে? কতবার কৃষ্ণ আসবেন? 50 বার কৃষ্ণ আসবেন, 50 বার মহাপ্রভু আসবেন। আর যদি ওদের একটু কৃপা সোনা যদি হয়ে গেল তাহলে হয়ে যাবে 50 বছর আয়ু বাকি আছে ব্রহ্মা।
365 বার আয়েঙ্গে বিসর্জন এবার দেখিয়েছেন যে ব্রহ্মা ডাক্তারের মধ্যে দেখিয়েছেন।
যদি লোভ হোগা তো লোভ কবি নষ্ট হয়ে যায়গা কি নাই? যদি অপরাধ হোগা তব তো নষ্ট হোগা, নাই তো অপরাধ নাই হোগা তো লোভ নষ্ট নাই হোগা। তো ইসলিয়ে লোভ তো বড়েগা কি উতনা হি রহ যায়গা না ক্যা হোগা? अब लोग अभी 50 वर्ष की आयु उनकी हो गई है, कृष्ण अभी चेष्टा कर रहे हैं और 50 वर्ष में महाप्रभु जी या कृष्ण का यदि कुछ और कृपा हो गई तो उसका पूरा भी हो सकता है। अभी साधन अवस्था में है, अभी सिद्ध नहीं है, इसलिए सिद्ध हो जाते तब तो नहीं होगा। आदि पुराण में भी कहते हैं न तथा ने प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रस्य पार्थिव न च लक्ष्मी न च आत्मा च यथा गोपी जन्मम। गोपियां हमारी इतनी प्रिय हैं किस लिए? गोपियां जो कृष्ण को इतनी प्यारी हैं ये किस लिए? यहां तक कि भागवत में कहा गया है गोपियों का कृष्ण की छाया प्रतिबिंब कहा गया। आ गया जिस प्रकार और बच्चा अपने प्रतिबिंब के साथ में खेलता है वो प्रतिबिंब खुद वही है। तो कृष्ण अपने प्रतिबिंब, गोपियां उनकी प्रतिबिंब है और कला है, स्वरूप शक्ति की कला है। कला माने स्वरूप शक्ति के ही वो प्रकार, इसलिए गोपियां और कुछ नहीं, हलादरी शक्ति स्वरूप शक्ति की वो प्रकार है। तो वो गोपियां इतनी प्यारी क्यों है? सुबल जी प्रेम प्रिय है, सिद्धांत भी, मधुमंगल भी प्रिय हैं, मैया जसोदा बड़ी प्यारी है कृष्ण, किंतु जब तुलना करेंगे तो किस भाव के वजह से ये इतने प्यारी है? उनका अनन्य भाव अंतिम सीमा तक है। इसलिए
जितने प्रकार के संबंध है गोपियों के साथ और किसी के साथ कृष्ण
है, इसलिए गोपीजन गोपियां जो है हमारी प्यारी है कृष्ण कहते हैं। वैसे ब्रह्मा रुद्र लक्ष्मी और मेरी आत्मा भी जाता वैसे प्रिय नहीं है जैसे कि गोपियां हमारी प्यारी हैं। इनमें से राधिका सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। राधा प्रियतम सेवक वर, श्रीमती राधिका जी के प्रियतम जो सेवक वर, कौमा गौरांग के अत्यंत अंतरंग सेवक, गौरांग जी के अंतरंग सेवक उनके मन को जानने वाले कौन है? रूप गोस्वामी। और वही राधा जी के प्रियतम सेविका होनी चाहिए, सेवक लिख दिया थोड़ा सा सेविका है, श्री रूप गोस्वामी प्रभु जरा एकांत अनुगत, रूप गोस्वामी के एकांत अनुगत। एकांत अनुगत मैंने क्या?
जैसे भाव जैसे चाहते हैं ऐसे ही।
एकांत अनुगत माने जो कहते हैं, जैसे भक्त स्वामी सिंधु में लिखा है उनको मानने वाले
नहीं, में लिखा है।
उनका जैसा भाव था, उनका जैसा कृष्ण के प्रति सेवा, महाप्रभु के प्रति जैसी भावना था, वो भावना लेकर के जो था तो वो एकांत अनुगत है। एक अंक अंतिम, एकांत अंतिम क्या भाव रूप गोस्वामी का? मैं उनकी राधा जी की एकांत गाती हूं, उसी का नाम है रूपानुगत। अब तहा देर ऐश्वर्य संबंधित चैतन्य के संबंध, उनके संबंध में महिमा के संबंध में बतलाया गया है। जब हम विचार करते हैं इस भावना से तो हम अब तुलना करें प्रहलाद जी का और उस गोस्वामी का। जब तुलना करेंगे तो क्या देखेंगे, कहां प्रहलाद महाराज और कहां
रुक्मिणी।
तो इसलिए यदि हम रूप गोस्वामी के विचार को अनन्य भाव कहते हैं तो इनको अनन्य भाव कहेंगे, अभी इनका प्रारंभ भी और उनका
अंतिम
ऐसा विचार। इसलिए उनको ऐसा मत तुच्छ मत समझो प्रहलाद महाराज,
वो
महाभागवत है। भक्ति तो ये साधन अवस्था में, सिद्ध अवस्था में भक्ति नहीं रहेगी। सिद्ध अवस्था में भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ पर रति है, भाव है। भाव माने वो भाव, हाई भाव, हाई भाव के ऊपर में जो महाभाव आता है, वो अनुराग के बाद में जो भाव होता है वो सब। चैतन्य चंद्रामृत में कहते हैं कवि कर्णपुर जी, आस्तांग वैराग्य कोटि भवतु, कोटि कोटि हमको वैराग्य हो जाए, वैराग्यम भवतु, सम दम शांति मैत्र आदि कोटि कोटि सत्वान ध्यान कोटि भवतु, और सम दम और दम अंतर इंद्रिय और बहिर इंद्रियों का दमन, अभी कल आपको तो बतला रहा था, क्रोध का दमन करना ये क्या है, अंतर ये सम है, और दम क्या है, किसी को मारने के लिए लाठी उठाई उसको हमने
आत्मकट
नहीं,
मैं खुद रोक लिया
अपने को रोक, और उसमें जितनी गंदी बातें हैं ऊपर से जो दिखती हैं, अपवित्रता इत्यादि को दूर करना ऊपर वाला, इसलिए स्नान इत्यादि ये सब चीजें, तीर्थों में स्नान करना और सब चीज, दान पुण्य इत्यादि ये सब चीजें बाहर इंद्रियों के दमन के, और अंतर इंद्रियों का दमन क्रोध है, आसक्ति है, मोह है, ये सब चीजों का दमन करना ये अधिक महत्व रखता है। ऊपर से हम किसी को हम कुछ कर सकते हैं, दमन कर सकते हैं, अंतर इंद्रियों को दमन करना बहुत कठिन है। अंतर इंद्रियों का दमन करना ही संन्यास है यथार्थ में। संन्यास का दो रूप, एक बाहरी और एक भीतर, लाल कपड़ा रंगा करके दंड ले करके संन्यासी बन जाना, ये एक बाहरी, और अंतर इंद्रियों का दमन करके उसमें भगवान में लगाना ये अलग है। तो ये होना बड़ा कठिन है। तो ये भी हो गई शांति, दुख उपस्थित होने पर भी, विपत्ति उपस्थित होने पर भी शांति है। शांति कैसी, शांति किसको कहते हैं, दुख उपस्थित होने पर, विपत्ति स्थान पर, चित्त चंचल होने का कारण उपस्थित हो करके, यदि हम उसे एकदम अक्षुभ रहे, न अर्दित असल वाला श्लोक, उसके द्वारा वशीभूत नहीं हो गए, तो ये तो है शांति, किंतु ये शांति यहाँ पर हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि संसारी विपत्ति आने पर भी भगवान के चरणों को न छोड़ करके अचंचल चित्त से, अक्षांत चित्त से, शांति से भगवान का भजन करता रहे, ये शांति है। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने या रूप गोस्वामी ने जो बताया शांति का व्यस्त काल ये है। और लोगों में शांति हो सकता है, संसारिक लोगों में, ज्ञानी लोगों को भी शांति होगी, अक्षुब्ध चित्त रहेंगे, किंतु चरण तक नहीं, भगवान के चरणों में चित्त नहीं लगेगा। हरिदास ठाकुर का चित्त कहाँ था, भगवान में लगा, 22 बाजारों में मार रहे, उनका चित्त भगवान से नीचे उतरा नहीं, और उनके लिए प्रार्थना करें थे कि प्रभु आप उनको क्षमा करें। यह है असल में शांति। यदि वो भगवत भाव को रहित होकर के केवल शांति होती तब तो शांति का कोई मूल्य नहीं है। यदि भगवत भजन नहीं है, वैष्णव के संग इत्यादि नहीं है, तो जितनी भी क्रियाएं हैं उस क्रियाओं का मूल्य अधिक नहीं है। इसलिए वैराग्य कोटि कोटि वैराग्य हो, सम दम शांति मैत्र आदि कोटि कोटि तत्व अनुसंधान भी हो, भव द्वार वैष्णवी भक्ति कोटि और वैष्णवी भक्ति कोटि कोटि भी हो। वैष्णवी भक्ति मैंने क्या है, वैष्णवी
भक्ति
वैष्णवी भक्ति मैंने साधारण रूप में दीक्षा लेकर के जो प्रारंभिक स्टेज में वैष्णव होकर के विष्णु की जो साधारण रूप में आराधना करते हैं वो वैष्णवी भक्ति। अर्थात तुम भगवान के साथ में कोई संबंध नहीं रख करके केवल उन पर भाव एक है निष्ठा है बस ये ही सब कर रहे हैं। वैष्णव गुरु से वैष्णव मंत्र के द्वारा दीक्षित होकर के विष्णु की जो पूजा होती है उसको
वैष्णवी भक्ति कर रहे हैं।
पूजा माने यहाँ पर सभी कुछ ले लो, किंतु अभी संबंध ज्ञान नहीं हुआ, अभी भाव अभी उनके प्रति वैसा नहीं आया। उत्तम भक्ति जैसे कहा गया है अन्नाभिलाष का ये सब नहीं आया है तो वो साधारण से वैष्णवी भक्ति हो। तो ऐसे भक्ति कोटि कोटि भक्ति भी हो, कोटि अंशों की अक्ष नस्याद अपि गुणगणों जस स्वतः सिद्ध आस्ते। तो ये सब कोटि कोटि भी भाव ये हैं, ये होने पर भी यदि स्वतः सिद्ध हृदय में वाची भावना न हो, किनके प्रति श्रीमद चैतन्य चंद्र प्रिय चरण नख ज्योति आमोद भोजा भाजा। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो चंद्र हैं, उनके जो प्रिय चरण नख, प्रिय माने रूप गोस्वामी इत्यादि, उनके चरण नख की कांति के द्वारा जो उद्भासित चित्त नहीं है, जिनका चित्त उसके द्वारा रंगा हुआ नहीं है, तो वो सब चीजें कोटि कोटि रहने पर भी आदरणीय नहीं। इसलिए ये कृति के लिए कहा, यदि कृति में यदि सबसे बड़ी कृति कौन है तो ये है गौचंद्र के जो पर अतंत प्रिय जो रूप गोस्वामी जो हैं, संत में यही लाए।
संतों में ये सिद्धा मिला जब तक हम पर्यत साधव रूपान को ना हो तब तक अनुभूति
रूपान नहीं होगा। रूपचंद्र जी की भक्ति में उनको लोभ हो करके वैसा साधन भजन नहीं करेगा एकांत रूप में, वह यदि करेगा तो वही एकांतिक कृति है और नहीं तो वो कृति अभी अधूरी कुछ और ऊपर उठी भी कुछ और ऊपर उठी है किंतु पूरी नहीं, पूरी होगी यहाँ आकर। बिना रूप गोस्वामी के अनुगत होकर के जीवों के लिए सबसे बड़ी कृति नहीं है यही। इसलिए प्रहलाद महाराज की कृति है बात ठीक है, किंतु रूपांग से संबंध अभी नहीं हुआ, उसमें था भी नहीं उसका प्रचार, इसलिए सबसे बड़ी कृति है। इतना बजा अब बतला रहे संपत्ति मध्य जीवन कौन संपत्ति बनी राधा कृष्ण प्रेम जात से वर्धन। संपत्तियां बहुत प्रकार की हैं इस जगत में, परमात्मा में भी संपत्तियां हैं, मुक्ति भी संपत्ति है, नारायण की भक्ति भी संपत्ति है, सब संपत्ति ठीक है, किंतु जितनी भी संपत्तियां हैं उसमें से राधा कृष्ण कृष्ण प्रेम नहीं कहा, राधा कृष्ण प्रेम जात से बड़ो धन, राधा कृष्ण के चरणों में जिनकी प्रीति है वही सबसे बड़ा धन। प्रेम धन व्यर्थ बिना दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, सबसे बड़ा यही प्रेम धन। हम लोगों को विचार करना चाहिए अभी धन में हमारा यथार्थ लोभ हुआ है कि नहीं, लोभ होने पर कोई चीज हम बाजार में लेने जा रहे हैं दुकान पर ना? या टिकट कटा रहे हैं, गाड़ी आने का समय हो गया है, और लाइन लंबी लगी हुई है तो उसमें में यदि किसी को जाना अत्यंत आवश्यक है तो लाइन की अपेक्षा करेगा, लोग उसको मना करेंगे, कुछ भी करेंगे, किंतु मानेगा नहीं।
ब्लैक मार्केटिंग,
वो जैसे होगा तैसे ब्लैक मार्केटिंग कर करके रुपया खर्च करके क्यू को तोड़ करके ऑफिस में जा करके जहाँ एक रुपया का टिकट है तो वहां पर 50 रुपया देकर के दी जाएगा, वहां पर नियम नियम सब कुछ धरा रह जाएगा। ये लोग का ही ऐसे ही यदि इनके प्रति लोग होना तो अभी काम चलेगा। राधा कृष्ण प्रेम या परिवर्तन जिनका राधा कृष्ण का प्रेम है वही सबसे बड़ा प्रेम। दुख मध्य कौन दुख है गुरु सर, प्रभुपाद जी करें जीव जितने जड़ भोग के लिए बातें हैं उपकरण हैं उसको धन मानते हैं, हमारे भोग इंद्रियों के लिए अच्छे लगने वाले सुखकर वस्तुओं को लेने के लिए चाहे धन हो या वो चीजों चीज वो सब अच्छा। जैसे पुरुषों के लिए भी स्त्री धन कहा गया है, गाय के लिए कहा गया है
गोधन,
ये भी गोधन है। धन से प्राप्त होने वाले हमारे इंद्रिय जितने प्रकार के सुख हैं वो सबको धन में गणना की गई, ये संसारी। और अपने इंद्रियों के सुख करने के लिए स्वर्ग में जितनी चीजें हैं नंदन कानन से लेकर के भोग की जितनी सामग्री है वो इस रूपे से मिलेगी कि नहीं, वो नहीं मिलेगी। अच्छा, ये प्रतिष्ठा कैसे मिलती है, रुपए पैसे से मिलेगी ना किस चीज से, रुपए पैसे से मिलती है किंतु कम। ये बड़े बड़े धनी लोग अपने देश में ही पूजे जाएंगे और गुण व्यक्ति क्या होगा, जहाँ जाएगा उसका गुण उसको पूजा कर
देते पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते,
और संसार में इसमें और भक्त की पूजा कहाँ कहाँ होगी,
ब्रह्मांड
में सर्वत्र में भक्तों की पूजा। इसलिए भक्त ही सबसे धन, इस भक्ति में भी जिसको सर्वोत्तम रूप गोस्वामी के अनुगत में जो कृष्ण के प्रति राधा जी के प्रति जो भाव है वो भाव जिसके अंदर में है उसकी सबसे बड़ी संपत्ति, इससे बढ़कर तो किसी में कोई संपत्ति नहीं। इतना दिन हो गया हम लोग यहाँ पर प्रचार उचार कर रहे हैं, मुश्किल से 2-4 आदमी होंगे जिनको ये भाव हम समझा सकते हैं, वो कुछ कुछ समझा सकते, वो यही समझे कि भगवान की भक्ति सब में बराबर सभी एक ही चीज है, ये समझना रूप गोस्वामी का विचार समझ करके और वैसे ही भक्ति करना, इतना कहने पर भी अभी हृदय में नहीं आता है तो वो कैसा भाव। जब ब्रह्मा जी को इतने दिन में नहीं मिला तो साधारण जीव के लिए क्या, लोग भी वैसा होना बड़ा भारी कठिन है। वही कहते हैं कि यदि वैसा कोई रूप गोस्वामी के अनुगत में जो भक्ति है प्रेमा भक्ति उसमें भाव भक्ति उसमें भी, और यदि उसमें किसी को लोभ और वो यदि किसी को प्राप्त हो तो ये सबसे बड़ा धन है। इसलिए संपत्ति में राधा कृष्ण का प्रेम वो भी रूप गोस्वामी के अनुगत होकर के रूप मंजरी के अनुगत होकर के जो प्रेम है वो सबसे संपत्ति। सीम अलभ्य इसके लिए बतला रहे हैं श्रीमद भागवत के 39वें अध्याय किम अलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन भी वाच्छन्ति किंचन। किम अलभ्य भगवती प्रसन्ने, यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या बाकी रहता है, भगवान के प्रसन्न होने पर कुछ बाकी नहीं रहता। तो यदि नारायण प्रसन्न हो जाए तो कुछ बाकी रहा कि नहीं, इसलिए श्री निकेतन माने श्रीमती राधिका निकेतन ये अर्थ लेना पड़े। यदि भगवती स्वयं भगवती ब्रजेंद्रनंदिनी श्याम सुंदर यदि वो प्रसन्न हो जाए तो क्या बाकी रहेगा, प्रसन्न होकर के उनसे ये मांगेंगे श्याम सुंदर श्रीखंड शेखर स्नेह अराधिकार रसिक मन कृपा विदेश और प्रिया ये यदि हो गया तो और कुछ बाकी नहीं जाना। इसलिए तथापि तत्परो राजन ही वाक्षण दिखी माने तथापि तत्परो माने कृष्ण की सेवा पर अथवा राधा जी का भाव या गोपियों का भाव तत्पर कृष्ण के प्रति जो सेवा की भावना है वो बात समझ की तो फिर वो ऐसा होने पर और किसी चीज की कामना वासना नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी परमहंस हैं और उन वो सब उनका दूर हो गया क्या
कसाय
मुख्य विभूत कसाय निर्भूत कसाय भाग्यवान है ना कोई ऐसा ना हो जैसे प्रभुपाद जी थे गाड़ी पर चलते थे मोटर गाड़ी पर और एरोप्लेन पर भी चढ़ते और वैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सन्यासी का सुखदेव गोस्वामी तो वैराग्य नहीं देखा जाता किंतु ये अपने को क्या कहते हैं अपना नाम क्या रखा है इन्होंने श्री वार्षभानवी देवी दई चाय वार्षभानवी जो राधिका जी की अत्यंत प्रिय सहज सेविका है ये नाम है। कृष्ण प्रेस्त होने पर भी नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय होने पर भी किंतु वार्षभानवी है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का इतना वैराग्य और इनका वैराग्य नहीं होने पर भी राय रामानंद और जो बैरागी लोग जो थे उनमें देखो तारतम्य के समान रहे ये इसलिए इनका बैराग्य और चरम सीमा पर है प्रभुपाद जी का। रूप गोस्वामी जी बैराग्य करते थे जैसे कि और लोग करते थे उतना बैराग्य नहीं किंतु हाँ उनका बैराग्य जो था उनको समझने वाले समझेंगे राय रामानंद जी का बैराग्य दूसरे समझेंगे। सफेद कपड़े में यहाँ तक केवल लंगोटी और केवल ए रोटी सूखी मूठी कभी थी वैराग्य कभी स्वाभाविक रूप में जो हो रहा है दिन रात कृष्ण के चिंतन में लगे रहते थे ऐसा होना चाहिए यही सबसे बड़ी संपत्ति है इससे बढ़कर से और कोई संपत्ति बनता thank you.